मैं तो उस लड़के के हाथों तंग आ गई हूं, कब इंसान बनेगा? अरे बेटा, तुम अभी तक नहीं गई?
गाड़ी के बगैर कैसे जाऊं? दाऊदी को क्या कहूंगी?
मैं सदके जाऊं, तुम तो जानती हो तुम्हारा भाई गाड़ी का आशिक है, चाबी क्यों देती हूँ फिर उसे?
सामने तो नहीं रखी थी अम्मी, उसने मेरे बैग से निकाल ली। सुबह तक नहीं सो सकी, कई दफा उसे फोन किया, हर दफा झूठ में कहता था कि आधे घंटे में पहुंचता हूँ, आंख में फोन बंद कर दिया। खुदा करे कि गाड़ी को कुछ ना हुआ हो, वरना उसकी खाल खींच लूंगी।
खुदा करे खुद उसको कुछ ना हुआ हो।
हाँ, और गाड़ी गई तो भाड़ में, मेरी इज्जत का सवाल है अम्मी।
इतनी परेशान ना हो मेरी बेटी, अभी आ जाएगा। क्या करूं, लाडला और नाफरमान है।
सलाम अलैकुम।
कहाँ गए थे तुम? हैं, बहन को अटैक आने वाला था।
लड़के,
ओ क्या हुआ?
अरे कर दिया है।
क्यों मार रही हो भाई?
छोड़,
कहाँ थे तुम?
अरे क्या हुआ? अरे क्या भैया, क्या हुआ है आखिर?
मैंने कहा था कि गाड़ी को हाथ मत लगाना।
अरे हाथ लगा दिया, कौन सी कयामत आ गई है? चलाने तो गया था थोड़ी दूर के लिए।
अरे तो फिर क्या हुआ?
चाबी दो।
ये लो।
खुदा के लिए बच्चों,
गाड़ी एकदम सही सालिम है, बस थोड़ा टंकी खाली हो गई है।
टंकी क्यों खाली है? रही है। तुमने मुझसे कल 60,000 तुम्हारे नहीं दिए थे क्या?
धीरे धीरे, हम सारे क्या करेंगे?
बच्चों के साथ शो मारने के लिए गया था।
अरे छोड़ो भैया, भगवान छोड़ो, हम सही क्या सोचेंगे? चले जल्दी से जाओ,
सारे इकट्ठे हो जाएंगे।
चलो ठीक है,
इस लड़का
जाओ।
मुझे नहीं पता ये कब इंसान बनेगा। दो ही दिन हुए हैं जेल से रहा हो कैसे?
बिल्कुल हौसला नहीं।
पता नहीं किस कब्रिस्तान में था, कहता है शादी में था।
अरे क्या बड़बड़ा रही हो? क्या बड़बड़ा रही हो? सिर्फ दो ही घंटे तो जेल में रहा हूँ और कह रही हो कि पता नहीं कितनी बड़ी कैद हो गई है।
हवाला
समझ गई ना मेरा उत्पाद में क्या फर्क है? तुम में और मुझ में क्या फर्क है? मैं जिंदगी में किसी चीज से नहीं डरता और तुम हर चीज से डरती हो। कुछ भी नहीं बन सकती।
चुप रहो,
अरे बस करो,
शर्म नहीं आती तुम्हें? चल जाओ।
अगली दफा शेर खान बनना हो तो खुद ही कुछ कर लो। लोगों की गाड़ियों मेरी इज्जत को दांव पे मत लगाओ।
क्या जबान पाई है, खुदा बचाए।
हाँ,
और भगवान मेरी बहन सदके जाओ। ये घर का क्या हुआ, तुम ढूंढ रही हो ना?
रहने दो
मेरा खुदा। हाँ हूँ, लेकिन मेरी प्यारी बहन कीमत बहुत बढ़ गई है, हमारे पास इतने पैसे तो नहीं है। 50 मीटर का डब्बा सा घर भी नहीं आएगा, मगर ये किसी महल में दोबारा कोई घर ढूंढे।
हमारी बहन, इन अखबारात को जरा गौर से छानो, शायद अच्छे इलाके में कोई छोटा मोटा सा घर मिल जाए हमें।
ठीक है।
अरगवान बेटा, सीना के काम का क्या बना?
सीना का काम? काम के लिए हौसला चाहिए होता है, इस शहजादे को तो खेल ही से फुर्सत नहीं है।
किसने कहा मेरे लिए काम ढूंढने के लिए? बताओ, मेरा पेशा म्यूजिक है, मैं कोई और काम नहीं करूंगा। हाँ, समझ गए आप लोग?
सच कह रहा है शहजादा, कोई और काम करेंगे तो इनकी उंगलियां खराब हो जाएंगी।
जाओ तुम लोग।
शहजादे, इसी साहब ने जिनकी गाड़ी तुम ले गए थे कहा है कि अपने भाई और उसके दोस्तों को मेरी आवाज के टेस्ट के लिए भेजो, लेकिन सीना साहब कल रात की हरकत की वजह से मैं तुम्हारे लिए काम नहीं
करूंगी। और क्या कह रहे थे?
बहुत पैसे वाले हैं, कह रहे थे अगर तुम्हारे भाई और उसके दोस्तों में टैलेंट हुआ तो उनके एल्बम के लिए पैसा दे सकता हूँ, लेकिन तुम्हारी इस हरकत की वजह से हमें कुछ नहीं।
अरगवान, मैं तुम्हारा नौकर हूँ, तुम्हारा गुलाम हूँ, तुम्हारे खाके पा हूँ। मैं बिल्कुल वही इंसान बनना चाहता हूँ जो तुम चाहोगी, लेकिन खुदा के लिए हमें उस साहब के पास ले चलो। अगर उसने मुझे कह दिया हाँ तो हमारा एल्बम तैयार हो जाएगा और हमारी जिंदगी सुधर जाएगी।
अरगवान बेटा, इस बार इसको माफ कर दो
खुदा के लिए।
अस्सलाम वालेकुम फरोजा फरसाद जी। फरमाइए, मैं आपकी खिदमत में हूँ। क्या हुई सनद?
माफी
नहीं, मैंने तो आपसे कहा था कि सनद के बगैर नहीं हो सकता। आप इस वक्त कहाँ हैं? ठीक है, तो मैं 1 घंटे तक फोन करती हूँ आपको। खुदा हाफिज। सीना
बताइए, बताइए।
और तुमसे काम है?
बताइए, फरमाइए।
दरवाजा बंद कर दो।
ओके ठीक। अरे बताइए क्या खिदमत?
देखो।
हाँ बताइए।
एक आदमी इन फाइलों को लेने आएगा, तुम उसकी खातिरदारी करना, किसी बहाने से उसको घर के अंदर ले जाके उसे पूरा घर दिखा देना, समझे?
ये कोई ड्रामा है या हमारा क्लाइंट है? किस लिए हम अपना घर दिखाएंगे? किस लिए घर दिखाएंगे उसको अपना?
रिश्ता मांगने वाला है, मैं उसे अपना गरीब खाना दिखाना चाहती हूँ ताकि वो देख ले।
अरे क्या सदाकत और सच्चाई है, लोग तो रिश्ता मांगने वालों के सामने सौ सौ झूठ बोलते हैं।
उससे वैसे भी मेरे बारे में गलत फहमी हो गई है, वो समझता है मैं पैसे वाली हूँ, और इस गाड़ी को देख कर तो बदतर। अच्छा छोड़ो, ध्यान रखना वो अपना तारुफ नहीं करेगा, तुम भी अपना तारुफ मत करवाना, सिर्फ घर बार दिखाना है, हुमा को भी कुछ नहीं बताना, हाँ वरना फिर वो डिप्रेस हो जाएगी, मुझमें हौसला नहीं।
क्या मतलब है कि डिप्रेस हो जाएगी? हर एक की अपनी किस्मत होती है, कब दूसरों के लिए कुर्बान देती रहोगी?
अरे तुम कितना बोलते हो, कहो जी।
जी
सीना, काम बिगाड़ नहीं देना।
जाफरी साहिबा।
जी फरमाइए।
बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सारे अफराद कंपनी में हाजिर हैं।
चेगिनी साहब बैंक गई है, एक घंटे बाद आएंगे। वफाई साहब भी मेरे ख्याल में 15-20 मिनट तक आ जाएंगे।
ठीक है, सबसे कहें कि 2 घंटे बाद बोर्ड की इमरजेंसी मीटिंग है, सबको इसमें हाजिर होना होगा।
ठीक है जी।
शुक्रिया।
कोई बात नहीं।
फरूजान फरसा
जी,
ये मीटिंग जो आज रखी है किस सिलसिले में है?
मैं अभी कंपनी का हिसाब किताब चेक कर रहा था, अफसोस के साथ हालात बहुत ख़राब हैं, और अगर इसी तरह रहे तो आजकल में ही कर्ज खा हमारे बाउंस चेकों की वजह से हम पर केस करके हमारी गिरफ्तारी का वारंट जारी कर लेंगे और हम सबको जेल भिजवा देंगे। सबसे पहले किसके पास आएंगे? वो मैनेजिंग डायरेक्टर। इसीलिए मैं आज की मीटिंग में कंपनी के काम को जारी रखने के बारे में किसी हतमी फैसले पर पहुँचना चाहता हूँ, माफ़ कीजिएगा।
السلام علیکم، خوش آمدید۔
आप बैठती क्यों नहीं?
बहुत शुक्रिया, मुझे खड़े होकर काम करने की आदत है।
ओके, लीजिए।
शुक्रिया, ये लें आपकी रसीद। माफ कीजिएगा, इसकी रकम
कम है?
हाँ, नेखा साहब इसको देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे।
ये तो आपकी रकम है, मैंने चेक टू बियर लिखा है और ये नेखा साहब का है।
आपकी मेहरबानी है, लेकिन मैं जिन केसों पर काम करती हूँ उनका कमीशन कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक लेती हूँ।
इसको आप इनाम समझिए, अपने काम को अच्छी तरह से अंजाम देने का इनाम।
अब भला मैं क्या बोलूँ, आप मुझे बहुत शर्मिंदा कर रहे हैं।
आप अपना फोन रिसीव कीजिए।
जी माफ कीजिए। हेलो अस्सलाम वालेकुम, एक मिनट होल्ड करें, माफ कीजिएगा मैं जरा फोन पर बात करती हूँ। हेलो।
हेलो, अस्सलाम वालेकुम आज़मिया साहब।
वालेकुम सलाम, आप कैसे हैं? ठीक तो है ना?
मैं ठीक हूँ, खुदा का करम है। आज़मिया साहिबा, मुझे आपको एक ज़हमत देनी थी, अगर मुमकिन हो तो आज रात हमारे घर तशरीफ लाएं और मेरे घर वालों के साथ कागजात के बारे में बात करें,
क्योंकि वो मेरी बात मान नहीं रहे हैं। आप कहेंगे तो शायद मान जाएंगे।
मैं क्यों?
क्योंकि आप ख्वातीन एक दूसरे की ज़बान अच्छी तरह समझती हैं।
ठीक है, मैं सोचूंगी, लेकिन मुझे भी आपको एक जहमत देनी है।
जी बताइए, मैं हाजिर हूँ।
मैं अपने एक मौकिल का एड्रेस आपको SMS कर देती हूँ।
अलबत्ता उनका घर शहर के निचले इलाके की तंगो तारीक गलियों में है,
अगर आपको जहमत ना हो तो मेरी तरफ से तशरीफ ले जाके वहाँ पर सीना मुस्तफी नाम के एक साहब से एक नीले रंग की फाइल ले लें, मैं आपकी शुक्रगुजार रहूँगी।
जरा एक मिनट मुझे लिख लेने दें। हसीना मुस्तौफी। ठीक है, आप मेरे लिए उसका एड्रेस SMS कर दें, मैं वहाँ पर चला जाता हूँ।
बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी होगी। खुदा हाफिज। माफ कीजिए, मैं चलती हूँ डॉक्टर साहब।
कुछ हो गया है क्या?
नहीं, कुछ नहीं हुआ। क्यों?
आपका फोन बहुत लंबा हो गया, इसलिए पूछ रहा हूँ।
हाँ, नहीं बहरहाल मेरे और भी मौकिल हैं और उनके काम भी करने पड़ते हैं।
अच्छा
अच्छा, अगर आपको कोई काम नहीं तो मैं फिर जाऊँ।
नहीं, कोई काम नहीं है, सिर्फ।
सिर्फ क्या?
देखो लड़की, तुम बहुत जवान हो लेकिन तुम्हारा चेहरा बहुत थका हुआ है। लगता है तुमने कुछ ज्यादा ही खुद को काम में मसरूफ कर दिया है। जिंदगी सिर्फ सुबह से शाम तक पैसे के पीछे दौड़ने का नाम नहीं है। जो गलती मैं कर चुका हूं तुम मत दोहराओ। एक दिन सुबह नींद से उठा तो लगा कि सब कुछ खत्म हो गया है, इसलिए मैंने वापस आने का फैसला किया।
आपकी नसीहतों का बहुत शुक्रिया, आप बहुत मेहरबान हैं।
नहीं, मैं सिर्फ एक तनहा मर्द हूँ जिसे जिंदगी ने सिखाया है कि हमें एक दूसरे का ज्यादा ख्याल रखना चाहिए। कुछ कहना चाहती थी?
नहीं, खुदा हाफिज।
खुदा हाफिज। जो मुश्किलात आपने बताई हैं वो हमें मालूम हैं, लेकिन जैसा कि आप सोचते हैं ऐसा नहीं है। यानी चेकों की वसूली और अपने माली वादों को पूरा करने के लिए कारखानों और कंपनियों को मजबूर करने से कुछ नहीं बदलेगा, बल्कि हमें अपनी कंपनी की रविश बदलनी होगी।
अच्छा, तो हमें क्या करना होगा? आप अपनी राय दें।
मुझे कैसे और थर्स से वजाहत करने दे। बात दूसरों के साथ ताल्लुकात की है। हम या तो ये खेल शुरू ही नहीं करना चाहिए, या अगर शुरू करें भी तो खेल के तमाम उसूलों का ख्याल रखना होगा।
रशीदी साहिबा, क्या हमारी कंपनी का अपना दस्तूर अमल नहीं है? क्या हमने अखलाकी उसूल और कवायद मुतय्यन नहीं किए हैं?
क्यों नहीं बेहजाज साहब, लेकिन हमें इनको बदलना होगा। इश्तहारात के अपने उसूल होते हैं, ऑर्डर देने वाले और ऑर्डर लेने वालों के दरमियान कुछ कंसोर्शियम और दलाल होते हैं। इन सब का आपस में हिसाब किताब होता है, अपने चैनल होते हैं। जब किसी काम का ऑर्डर देते हैं तो उसके बदले में तवक्कुआत होती हैं। मेरी बात समझ रहे हैं?
हाँ, मैं आपकी बात पूरी तरह समझ रहा हूँ, लेकिन मैंने भी अपनी राय बताई। मेरे ख्याल में हमें इन उसूलों के सामने तस्लीम होने के बजाय उनको बदलने की कोशिश करनी चाहिए।
फुरूजान फर्ज साहब, हम में इन उसूलों को तब्दील करने की ताकत नहीं है, इसलिए ज्यादा हकीकत पसंदी का मुजाहरा करना होगा।
हमारे पास सिर्फ दो ही रास्ते हैं जनाब। नंबर एक, इस कंपनी को बंद कर दें, या अपने फरसूदा अखलाकी उसूलों से दस्तबरदार हो जाएं और दूसरों के रंग में रंग जाएं।
मेरे ख्याल में एक रास्ता और भी है, और वो यह है कि आप लोग मेरा हिस्सा खरीद लें और कंपनी को जिस तरह से चाहें खुद चलाएं। तो क्या ख्याल है आप लोगों का?
इस बारे में इतनी जल्दी फैसला नहीं किया जा सकता।
जी हाँ, मैं भी समझती हूँ। इस बारे में फैसला करने के लिए हमें मजीद वक्त की जरूरत है।
मैं भी अगरचे आपके जाने के हक में नहीं हूँ, लेकिन अगर आपका यही फैसला है तो मैं एहतराम करूँगा। बस आप हमें पैसे का इंतज़ाम और उसकी अदायगी के बारे में फैसला करने के लिए थोड़ी सी फुर्सत दें।
ठीक है, तो फिलहाल तमाम मामला को यहीं पर रोक दें।
लेकिन फुरूजान फर्ज साहब, हमने हफ्ते के एंड तक कुछ ऑर्डर देने वालों के साथ मुलाकात रखी है।
कैंसिल कर दें मोहतरमा, कैंसिल कर दें, और अगर हो सके तो घर में इंतज़ाम करें, क्योंकि ये तरीक़ेकार जारी रखना मेरे ख्याल में कंपनी के फ़ायदे में नहीं है, मतलब सिर्फ खर्चे में इजाफे का बाइस है। इजाज़त।
किस मुश्किल में फंस गए?
हाँ भाई, मैं तो थक गया हूँ।
बहुत अच्छा, बहुत मजा आया। हमें खुशी थी कि हमारे यारान गार बिजनेसमैन हैं, पर पता चला कि वो एहतमाली नुकसान के डर से पैसे को बैंक में डाल रहे हैं और सरमायाकारी की तरफ नहीं जाते।
हमारे पास आपके जैसी छठी हिस्स तो है नहीं कि बाजार को समझ लें कि क्या होने वाला है, इसीलिए मैं एहतियात करता हूँ।
फॉरेन करेंसी में आजकल काम करना एक जुए की तरह है, अगर आपकी किस्मत अच्छी नहीं है तो सब आपके हाथ से चले।
अरे दोस्तों, अब बस भी करें बातें, हम यहाँ थोड़ी देर तफरी के लिए आए हैं, आप लोगों ने फिर बाजार और डॉलर वगैरह की बातें शुरू कर।
निसाम साहब, ताल्लुकात के अपने उसूल होते हैं, कसाब मंडी से गोश्त की कीमत मालूम करता है और ताजिर सर्राफ से डॉलर की कीमत पूछता है, हमेशा से यही होता है।
अच्छा तो फिर
अगर तुम इक्तसाद से मुतालिक बहस में शिरकत नहीं कर सकते, मतलब तुम्हारे हवास ठिकाने नहीं है। जब डॉलर की कीमत ऊपर नीचे होती है तो अपने आप को ऊपर लाने का बेहतरीन मौका होता है, मतलब तुम्हारे कान तेज होना चाहिए, वरना चंद ही दिनों में तुम्हारे सरमाए कीमत आधे से भी कम हो जाएगी और तुम अफसोस करते रह जाओगे।
अब बताओ क्या किया जाए।
इस वक्त दरामदात का बेहतरीन मौका है, जब पाबंदियाँ लगती है तो माहिर लोगों के लिए रास्ते खुल जाते हैं और वो ऐसे चैलेंज ढूंढ लेते हैं जिनके जरिए पाबंदियों के बावजूद माल दरामद करके आम हालात के बनिस्बत कई गुना ज्यादा मुनाफा हासिल कर लेते
हैं। तुम ऐसे चैलेंज जानते हो?
जी।
मेरे लिए किसी कंपनी की एजेंसी ले सकते हो?
कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन तुम्हारे लिए नहीं, क्योंकि तुम पर भरोसा नहीं किया जा सकता।
इसकी तो मैं भी तायद करता हूँ, मैंने इनकी बेटी के लिए तवक्कुलियान के बेटे का रिश्ता भिजवाया था, लेकिन इनको तो कोई फिक्र ही नहीं थी, बिल्कुल सो रहे थे, बल नींद में थे भाई।
आपको नहीं मालूम है तलाई साहब, इनसे कहो कि किस मुसीबत में फंस गए थे।
क्या हुआ?
कुछ नहीं, अपने घर की एक लड़की की मैंने शादी करवाई एक आदमी से, अच्छा काम था उसका, लेकिन बाद में लड़की वापस आ गई, बताया कि वो तो नशा करता है।
यानी बिल्कुल तुम्हारी तरह।
मजाक मत करो यार, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये जो लड़का है ना डॉक्टर है, जिंदगी बन जाएगी इस लड़की की।
हिसाम सही बात तो यह है कि तवक्कुलियान तुमसे बहुत नाराज था।
गलती हो गई, उससे कहो दोबारा आए, इस दफा इनकार नहीं करूंगा।
एक बात बताओ हिसाम, तुम संजीदा तो हो ना?
अस्सलामुअलैकुम।
वालेकुम अस्सलाम।
मुस्तफ़ी साहब का घर है?
जी हाँ जी हाँ।
मैं आज़र मियाँ साहिबा की तरफ से उस फाइल के सिलसिले में आया हूँ।
अच्छा, आप ठीक हैं? उन्होंने फ़ोन किया था, कह रही थी कि आप तशरीफ़ लाएंगे, अंदर तशरीफ़ लाइए।
शुक्रिया, ज़हमत नहीं दूंगा।
नहीं नहीं मेरे भाई, आप मेहमान के दरवाजे पर नहीं छोड़ते, आइए तशरीफ़ लाइए।
अच्छा ठीक है,
आइए अंदर तशरीफ़ लाइए, आइए अंदर तशरीफ़ लाइए।
बहुत शुक्रिया, यहीं ठीक है।
आइए, कुछ ठंडा गर्म वगैरह?
नहीं नहीं, बहुत शुक्रिया,
आइए, अभी मैं हाजिर होता हूँ।
बहुत शुक्रिया।
जनाब
फरुजान फरहान।
फरुजान फरहान साहब, अंदर तशरीफ लाएं, यहाँ पर तीन फोल्डर है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि कौन वाला देना
है। अरे मैं भी नहीं जानता हूँ, मुझे सिर्फ इतना कहा गया है कि एक फाइल है वो लाना है, ब्लू कलर के फोल्डर में।
अच्छा ब्लू, हाँ तशरीफ लाए, कोई तकल्लुफ ना करें, आप नहीं घर समझिए, आइए तशरीफ
लाए। मैं इजी हूँ, शुक्रिया।
भाई यहाँ पर तीन ब्लू कलर के फोल्डर पड़े हुए हैं, अगर आप चाहें तो मैं तीनों आपको दे दूँ, वहाँ पर आप ले जाइए, वो अपना चेक कर लेंगे।
जैसे आप मुनासिब समझें।
लेकिन मोहतरमा से कहिएगा कि अपनी शादी हमको ज़रूर बुलाएंगी।
क्या उनकी शादी तय है?
हाँ, मैंने उनसे कहा था, काफ़ी अच्छे रिश्ते हैं, डॉक्टर इंजीनियर।
आपको कहाँ से मालूम?
نکھا صاحب نے بتایا ہمارے قانونی امور کے دفتر کے باس ہیں.
انشاءاللہ مبارک ہو, خدا کامیاب کرے. جناب بہت بہت شکریہ.
مہربانی جناب,
ایک بار پھر شکریہ.
شکریہ بھائی,
بڑی خوشی ہوئی,
مل کر بہت خوشی ہوئی. السلام علیکم امی.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
السلام علیکم.
کون تھے؟
آئیے ذرا.
تم اندر آ.
سینا یہ کون تھے؟
ارغوان کی ایک فائل گھر میں رہ گئی تھی, صاحب لینے کے لیے آئے تھے.
ایسا کیوں کیا؟
تو بول دیتے ہم ان کے لیے بھیجوا دیتے.
مجھے کیا پتا, آپ بھی بال کی کھال نکالنے لگتی ہیں, خود ہی اسے پوچھ لیجیے.
کیسے بات کرنے کا انداز ہے؟
ہیلو, السلام علیکم, کیسی ہو ارغوان؟ کام ہو گیا ہے, ٹینشن نہ کرو. ہاں ذرا ابن وغیرہ کی بات کر لینا. خدا حافظ.
السلام علیکم. دیکھیے جہاز کی طرح تیزی سے فوراً خود کو یہاں پہنچایا میرے پاس.
باس,
افسوس کہ سہیل صاحب کو جیل میں ڈالا گیا. کس نے ڈالا جیل میں؟ تمہارے چچا نے. جب اس کو ڈال سکتا ہے تو میں اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہوں. میرا کوئی مستقبل نہیں ہے. میں اگر کوئی سوراخ بھی کرائے پہ لینا چاہوں تو کافی کرایہ دینا پڑے گا. یہی کہیں کوئی مسافر خانہ ہوگا, میں جا کے رکتا ہوں تاکہ تمہارے چچا کے ہاتھ مجھ تک نہ پہنچے.
ٹھیک ہے, یہ کام میں کر دوں گا, بشرطے کہ میرے ساتھ تفتیش کار کے پاس آؤ. ٹھیک ہے.
اصل میں باس, مجھے 3 ملین چاہیے.
تمہیں بلیک میل کرنے کی عادت ہوگی ہے نا؟
آپ کی مہربانی ہے جو ہمارا پیٹ پال رہے ہیں. یہاں کی ڈش بہت لذیذ ہے. قاسم صاحب,
ہاں دلاور,
2 کھانے لے آؤ.
اچھا,
اور چائے, کھانے سے پہلے 2 پیالی چائے ہو جائے, ہے نا قاسم جان؟ 2 چائے بھی لے آؤ.
اچھا ٹھیک ہے.
جی آپ صحیح فرما رہے ہیں. بہرحال میں نے عرض کیا نا کہ بات قانون کی ہے اور قانون کا اپنا طریقہ کار ہوتا ہے, اتنی جلدی نہیں ہو سکتا. جی ہو جائے گا, میں فون کروں گی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, خدا حافظ. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. کیا ہے, ایسے کیوں دیکھ رہی ہیں؟
ایسے ہی. اچھا فائل کا کیا ہوا, جا کے لے آئے؟
جی لے آیا.
بہت شکریہ, معاف کیجیے آپ کو زحمت.
کیسی باتیں کر رہی ہیں آزر نیا صاحبہ؟ یہ کون سی جگہ تھی جہاں آپ نے مجھے بھیجا؟ کیا آپ کے لیے موکلوں کا قحط ہے؟ البتہ یہ سینا صاحب آپ کی بہت تعریف کر رہے تھے.
ان کی مہربانی ہے.
کہہ رہے تھے کہ شاید آپ شادی کر رہی ہیں خیر سے اور بڑے مالدار گھروں سے آپ کے رشتے آ رہے ہیں.
انہوں نے ایسا کہا؟
جی.
اصل میں ابھی کچھ خاص طے نہیں ہوا ہے, صرف کچھ باتیں ہی ہوئی ہیں, بس اسی حد تک.
اور آپ کا اپنا کیا خیال ہے, آپ بھی راضی ہیں؟
ایسے مسائل میں جلدی نہیں کی جا سکتی, لیکن میرا نہیں خیال.
یہ سن کر خوشی ہوئی. میرے خیال میں اگر انسان کو کوئی پسند نہ ہو تو اس سے شادی کرنے کی کوئی تک نہیں بنتی. مثلاً میں.
چھوڑیے فروزان فر صاحب, آپ کے اس گواہ دلاور کا کیا بنا؟
मैंने उसे अपने दफ्तर में बंद कर दिया है।
बंद कर दिया?
जी।
पर ये काम जुर्म समझा जाता है।
अरे उसकी अपनी मर्जी से।
सच आपने नहीं बताया कि आपकी फैमिली को कागजात देने की मुखालिफत कर रहे हैं।
मुझे लगता है चाचा से डर रहे हैं, इसीलिए मैंने कहा कि आप तशरीफ ला के उनको जरा हौसला दें।
लेकिन मैं तो उनको जानती तक नहीं हूँ।
जान लेंगी।
अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम।
ये किस लिए?
बच्चों के लिए।
सलाम अब्बू जान।
वालेकुम सलाम।
अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम डॉक्टर साहिबा।
ऐसी चीज खरीदिए जिसे ना आप खा सकते ना ही मैं।
हाँ अब्बू जान, उसी बेकरी से लिए जहाँ बचपन में हमें ले जाया करते थे।
हाँ, और क्या?
लेकिन क्रीम वाली पेस्ट्री क्यों नहीं ली?
वो भी ले
आऊं। अरे आपके शुगर और कोलेस्ट्रॉल का क्या होगा?
लीजिए डॉक्टर साहिबा।
नहीं मुझे नहीं चाहिए।
सुना नहीं अबू ने क्या कहा? बेफिक्र होके खाओ।
अच्छा अब ये बताइए किस मुनासिबत से लाए हैं?
आज ऑफिस में मैं बहुत सोच रहा था इस बात पर कि इंसान की जिंदगी में कुछ वाकयात ऐसे पेश आते हैं जिनकी वजह से वागा नहीं होता। अब मैं बहुत पुरसकून हूँ।
वारे, अब जबकि अबू पुरसकून है मैं एक अच्छा सा म्यूजिक लगाती हूँ कि आप सबको मजा आ जाए। कैसा है अबू?
همه چی آرومه تو به من دل بستی این چقدر خوبه که تو کنارم هستی همه چی آرومه قصه ها خوابیدن شک نداری دیگه تو به احساس من همه چی آرومه من چقدر خوشحالم پیشم هستی
یه حالا جو آپ کے بھائی نے ہمارے لیے بنائے ہیں آپ کیسے پرسکون رہ سکتے ہیں پتہ نہیں؟ تہمت جھوٹ الزام آپ اس طرح سے خود کو دھوکہ دے رہے ہیں۔
فکر نہ کرو سب ٹھیک ہو جائے گا۔
ماہرین نفسیات کہتے ہیں کہ ایک سائیکولوجیکل ڈیفنس میکنزم ہے۔ آج ہمارے استاد کلاس میں بتا رہے تھے کہ ایسے ہی ذہن اپنے مسائل نپٹاتا ہے۔
ماشاءاللہ۔
نگار مذاق کو چھوڑو۔
میں مذاق نہیں کر رہی، سب ماہرین نفسیات یہی کہتے ہیں۔
تم ایک منٹ اپنا منہ بند رکھ سکتی ہو؟
ابو جان یہ جو آپ کا سکون ہے نا اور آدمی کو پریشان کر دیتا ہے، کچھ ہوا ہے کیا؟
تھوڑا سا صبر کرو گی تو تم بھی پرسکون ہو جاؤ گی۔
آپ اپنی بات کی وضاحت کر سکتے ہیں کیا؟
میں غلطی پر تھا، تمہارا اور بہزاد کا کوئی جوڑ نہیں ہے، تمہاری ماں صحیح تھی، وہ لڑکا جو باہر کا رشتہ مانگنے آیا تھا، کیا نام تھا اس کا؟
ماشاءاللہ سے ایک دو تو نہیں تھے، کون سے والے کا کہہ رہے ہیں؟ توکلیان کے بیٹے کا؟
ہاں توکلیان کا بیٹا جو میرے آفس آیا تھا، کافی سمجھدار لڑکا تھا۔
آپ کے منہ میں گھی شکر، اچھی فیملی ہے، اچھا مستقبل ہے، بس صرف ان دو تین سالوں کی بات جن میں اس کو اسپیشلائزیشن کرنا ہے، وہ بھی آنکھ چپکتے ہی گزر جائے گا۔
اس بحث کو ختم کیجیے پلیز، مجھے ابھی شادی کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔
اچھا ہوا جو تمہارے چچا کے بیٹے نے صاف جواب دے دیا ہے کہ اسے تم سے شادی نہیں کرنی۔
نہیں قسم سے یہ تو نہیں کہا، کہا کہ اسے مزید سوچنے کا ٹائم دے بس۔
تم سائیکالوجسٹ بننا چاہتی ہو اور تمہیں یہ بھی نہیں پتا کہ اس پیشے کا پہلا اصول یہ ہے کہ تم دوسروں کے رازوں کی حفاظت کرو۔ چغل خور صاحبہ، ابو جان آپ بہزاد سے ناراض ہیں، صحیح، آپ اسے نہیں دیکھنا چاہتے، صحیح، آپ اسے انتقام لینا چاہتے، صحیح، لیکن اس بیچ میں بلی کا بکرا کیوں بنوں؟
میرے خیال میں بھی ان مسائل کو بیٹھ کے ذرا منطقی طریقے سے حل کرنے کی
تم دخل نہ دو پلیز۔ امی خدا کے لیے میری شادی کرانے کے لیے اتنی جلدی نہ کیجیے، مجھے ان لڑکیوں پر رونا آتا ہے جو زبردستی شادی کرنے کے لیے مجبور ہو جاتی ہے۔
बहुत शुक्रिया बहार साहिबा, मतलब मैं तुम्हें जबरदस्ती बहाना चाहती हूँ है? सुन रहे हैं आप ये क्या कह रही है?
पहले से कोई राय कायम ना करो, तवक्कुलियान के बेटे के साथ बैठकर बात करो, शायद तुम्हारी राय बदल जाए।
देखिए अबूजान, मुझे लगता है कि
जी। वालेकुम सलाम।
लोगों को देखो।
अम्मी आई सेब खाए।
मुझे नहीं खाना, तो बिन हालात में बैठ के सेब खिला रही हूँ। सेब खाओ, खुद खाओ, मैं डाइट पर हूँ।
کدوم خواستن، کدوم جنون، کدوم عشق؟ شاید خیلی از این حرفا دروغه، تا وقتی با همین از عشق میگیم نباشیم قولمون حتی دروغه. از این عشقایی که زنجیر میشه، هوس‌هایی که دامنگیر میشه، میترسم چون دلم بی‌اعتماده به احساسی که بی تأثیر میشه. نه این که عاشقی حال خوشی نیست، نه این که زندگی بی عشق میشه، فقط کاش بین این حسای مبهم بفهمم آخره